नमस्कार, जनसत्ता में सुनिए सुर्खियां, देश दुनिया की बड़ी खबरें। जब पिता के मंत्रिमंडल में बेटों ने संभाला मंत्री पद, रणजीत सिंह से आदित्य ठाकरे तक, कौन सफल कौन नाकाम। राजनीति का एक नियम है, लोकतंत्र के सहारे सत्ता के शिखर पर बैठे लोग अपनी राजनीतिक विरासत हमेशा अपने बेटे और बेटी को ही सौंपते हैं, भले ही उनकी पार्टियों में योग्य लोग हों, लेकिन सियासत के शिखर की तरफ वो अपनों को ही लेकर चलते हैं। भारतीय राजनीति के इतिहास में राजनीतिक परिवारों की लंबी फहरिस्त है, लेकिन आज हम आपको उन मुख्यमंत्रियों के बेटों की कहानी दिखाएंगे जो पिता के सीएम रहते हुए मंत्रिमंडल में रहे, लेकिन कामयाबी वो सवाल बन गया। सबसे पहले बात करते हैं चौधरी देवीलाल और रणजीत सिंह। सबसे पहले हरियाणा में चौधरी देवीलाल ने अपने बेटे रणजीत सिंह को अपनी सरकार में मंत्री बनाया था, लेकिन पिता के फैसलों से रणजीत सिंह हमेशा संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। जब देवीलाल ने ओम प्रकाश चौटाला को मुख्यमंत्री बनाया तो इससे नाराज रणजीत सिंह पार्टी से ही अलग हो गए थे और इसके बाद सियासत में आगे नहीं बढ़ पाए। प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल जब मुख्यमंत्री थे तब उनके बेटे सुखबीर सिंह उप मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि पिता के मुख्यमंत्री रहते हुए सुखबीर ही सरकार चलाया करते थे, लेकिन वो कभी आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। चंद्रशेखर राव और केटी रामा राव। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने अपने बेटे केटी रामा राव को मंत्री बना रखा है। चंद्रशेखर राव अपने बेटे को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी सियासी विरासत को उनका बेटा संभाल सके, लेकिन ये कब संभव होगा वो भी कहा नहीं जा सकता। उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। ठीक इसी तरह उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने अपने बेटे आदित्य ठाकरे को मंत्री बनाया। हालांकि उद्धव ठाकरे की सरकार बीच में ही डगमगा गई, आदित्य की सियासी कामयाबी भी सवाल बन गई, लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी पिता के मंत्रिमंडल में कोई बेटा मंत्री रहा, पार्टियों के अलग अलग लोग उनके व्यवहार और विचार पर सवाल उठाते रहे। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक संकट देश में कोई नया नहीं है, इससे पहले भी तमाम राज्यों में इस तरह का राजनीतिक संकट देखने को मिलता रहा है। चुनाव बाद विधायकों सांसदों द्वारा दल बदल गैरकानूनी है, इसके बावजूद राजनीतिक पार्टियां और राजनेता इसकी कमियों का फायदा उठाते रहते हैं, तो वहीं कई बार इस कानून का खामियाजा भी विधायकों और सांसदों को भुगतना पड़ता है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है दल बदल विरोधी कानून और क्यों चाहिए होता है एक तिहाई का आंकड़ा। क्या है दल बदल कानून? साल 1967 के आम चुनाव के बाद विधायकों के इधर उधर जाने से कई राज्यों की सरकारें गिर गईं। ऐसा बार बार होने से रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। संसद ने 1985 में संविधान की 10वीं अनुसूची में इसे जगह दी गई। दल बदल कानून के जरिए उन विधायकों सांसदों को सजा दी जाती थी जो एक पार्टी छोड़कर दूसरे में जाते हैं। इसमें सांसदों विधायकों के समूह को दल बदल की सजा के दायरे में आए बिना दूसरे दल में शामिल होने या विलय की इजाजत है, लेकिन इसके लिए विलय या दल बदल के पक्ष में किसी भी पार्टी के 2/3 विधायकों या सांसदों का सहमत होना जरूरी है। 2003 से पहले विलय या दल बदल के लिए 1/3 विधायक या सांसदों की सहमति लेनी होती थी। यदि 2/3 विधायक अलग हो गए तो उन्हें अयोग्यता से तभी बचाया जा सकेगा जब वे किसी अन्य पार्टी में विलय कर लेंगे या विधायक में एक अलग पार्टी बना लेंगे। दल बदल कब होता है, कौन तय करता है? कानून के तहत 3 स्थितियां हैं, इनमें से किसी भी स्थिति में कानून का उल्लंघन सदस्य को भारी पड़ सकता है। विधायिका के पीठासीन अधिकारी यानी स्पीकर चेयरमैन ऐसे मामलों में फैसला करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार इनके फैसलों को उच्च अदालतों में चुनौती दी जा सकती है। एक पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने वाला स्वेच्छा से उस पार्टी की सदस्यता छोड़ दे या विधायिका में पार्टी की इच्छा के खिलाफ वोट करे। सदन के भीतर और बाहर जन प्रतिनिधि का आचरण इस बात को तय करने में मदद करता है कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ी गई है या नहीं। निर्दलीय चुने गए सांसद विधायक अगर बाद में किसी पार्टी की सदस्यता ले ले, नामित जन प्रतिनिधियों से संबंधित कानून के अनुसार अगर वे नियुक्ति के 6 महीने के भीतर किसी दल में शामिल हो सकते हैं, उसके बाद नहीं। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आइए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।